ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुर श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका भीष्म पंचक के इस पावन पर्व पर। भीष्म देव की स्तुतियों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, किस प्रकार इन स्तुतियों के द्वारा भीष्म देव की भक्ति प्रकट हो रही है। भीष्म देव ने अपने जीवन में अपने उदाहरण से, अपनी शिक्षाओं से, अपने वचनों से, अपने कौशल से बहुत सी चीजों को प्रकट किया। उनके युद्ध की कला, उनके राज्य करने की कला, उनकी दृढ़ता या उनका बल, बहुत कुछ। उनका प्रेम जो पांडवों के प्रति था, या फिर उन्होंने क्रोध प्रकट किया, तो ये सारी चीजें उन्होंने जीवन में प्रकट की और इन सब का आधार भक्ति था, कृष्ण की इच्छा की पूर्णता। और अब जीवन के अंत में बाणों की शैया पर बैठे हुए, लेटे हुए बाणों की शैया पर इस समय वे अपनी सर्वश्रेष्ठ संपत्ति को अब प्रदर्शित कर रहे हैं और वो है भक्ति, भगवान के चरण कमलों के प्रति उनका आश्रय या उनकी आसक्ति। सो हम कुछ उनकी स्तुतियों को सुन चुके हैं। कल हम लोग सुन रहे थे कि कैसे भीष्म देव ने वर्णन किया भगवान का, कि भगवान पहले तो सुंदरता का वर्णन किया और फिर अब युद्ध क्षेत्र का वर्णन करने लगे कि जहां उनके बालों पर बाल उड़ रहे हैं और बालों पर धूल लग रही है, और फिर कैसे वो उनको देख रहे हैं। तो अब उसका आगे उस दृश्य का वो आगे वर्णन करने जा रहे हैं। तो अब आगे उन स्तुतियों को हम लोग सुनेंगे। सपदी सखी वचो निशम्य मध्य निज परयोर बलयोरथम निवेश्य स्थितवती पर सैनिकायु रक्षण ऋतवती पार्थ सके रति ममास्तु। अब ये बहुत सुंदर वर्णन अपने भक्ति अपने प्रेम का कृष्ण के प्रति वे कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमें भक्ति में एक बहुत महत्वपूर्ण भक्ति के लक्षण को भी वो इस प्रार्थना में प्रकट कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहे हैं? सपदी, सपदी मतलब युद्ध क्षेत्र में, सखी वचन मतलब अपने सखा अर्जुन के आदेश पर, आदेश किया अर्जुन ने निशम्य सुनने के बाद, आपने क्या किया? मध्य, मध्य मतलब आप बीच में ले गए। किसको ले, कहां ले गए बीच में? रथ को बीच में ले गए। कहां? दोनों पक्षों के, परयोः, परयोः मतलब दोनों पक्षों के बीच में ले गए। किस लिए? बल को दिखाने के लिए। और उसके बाद वहां पर उन्होंने स्थित कर दिया, स्थितवती पर सैनिका, तो जो वहां आगे दूसरे जो सैनिक हैं उनको उनकी तरफ जाकर दिखा दिया, उनकी तरफ देख रहे हैं। किस लिए देख रहे हैं अर्जुन? यहाँ पर भगवान का वो वर्णन करते हैं कि वहां जब आप पहुंचे और आपने सारे सैनिकों को देखा है, सो उस समय आपने केवल अक्षणा अपने अपने आंखों से अपनी दृष्टि से आयु हृतवती, उनकी जो आयु थी उसको समाप्त कर दिया। और ऐसे आप जो पार्थ सखे, पार्थ के मित्र हैं, पार्थ ने तथा पुत्र अर्जुन उसके मित्र हैं, रति ममास्तु, मेरी रति उस रूप में हो, मेरा आकर्षण उस रूप में हो। तो ये वर्णन भीष्म देव करते हैं। तो हम देख रहे हैं ये जो भीष्म देव की स्तुतियां हैं, 11 श्लोक हैं इन स्तुतियों में, और ये 11 श्लोकों में मान लीजिए कि भीष्म देव अपनी 11 इंद्रियों को, 10 इंद्रियां और मन, मन षष्ठानी इंद्रियाणी, तो अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को अर्पण कर रहे हैं। दूसरे श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन उन्होंने किया, तीसरे श्लोक में फिर से भगवान के मुख का वर्णन करते हैं भीष्म देव, और भगवान के मुस्कान का वर्णन उन्होंने किया, और अब वो वर्णन कर रहे हैं उस दृश्य का। तो ये समय था कि अब युद्ध शुरू होने वाला है, बस युद्ध शुरू होने वाला, शंख बज चुके हैं। अर्जुन पहला व्यक्ति है जो एकदम तैयार है युद्ध के लिए, और जब युद्ध अब प्रारंभ हो रहा है तो अर्जुन, अर्जुन ने एक शेर की तरह रथ पर चढ़ता है, और फिर वो अपने रथी, अपने सारथी अर्थात श्री कृष्ण से वो कहता है कि ये जो रथ है इसको बीच में ले चली। क्यों अर्जुन बीच में क्यों ले जाए? क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कौन कौन है ये दुर्योधन का दुर्बुद्धि, ये दुर्बुद्धि दुर्योधन का साथ देने के लिए कौन आए हैं, मैं देखना चाहता हूं। अर्जुन जानता नहीं था कि अब ये जिसको ये कह रहा है कि दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि का साथ देने जो आए हैं, मैं उनको देखना चाहता हूं, अभी कुछ ही समय में उसकी ही बुद्धि दोष में होने वाली है। तो अर्जुन ने कहा, ये अर्जुन जाना चाहते थे कि कृष्ण चाहते, अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण लेके जाए, ऐसा नहीं था कि कृष्ण ने खुद कहा था चलो मैं लेके चलता हूं। तो इसीलिए यहां शब्द आया सपदी सखी बचो। आदेश किसने दिया आपको? अर्जुन ने। अब ये भीष्म देख रहे, देखिए भीष्म इस सब दृश्य को उस समय भी देख रहे थे, उनकी भक्ति उमड़ रही थी लेकिन सेवा थी, उनकी सेवा थी कृष्ण के शत्रु बनना, उनकी सेवा थी कृष्ण का विरोध करना, उनकी सेवा थी दुर्योधन जैसे अधर्मी का साथ देना, इसलिए इस भक्ति को प्रकट नहीं कर पा रहे थे, देख रहे थे। लेकिन आज आज उनकी वो सेवा नहीं है, भगवान ने उनकी सेवा को समाप्त कर लिया, स्वीकार कर लिया, बस अब सेवा हो गई और अब वो उस भक्ति को प्रकट कर रहे हैं। तो भीष्म देव कहते हैं सपदि सखी बचो कि आपको आदेश दिया और किसको आदेश दे रहा है अर्जुन और कौन स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भगवान सदैव हमेशा ही इनका इतना प्रेम है अपने भक्तों के प्रति कि वो बस एक पिता की तरह है, जो जो कह दिया कर लेंगे। तो भगवान अब वो वात्सल्य भाव प्रकट हो गया भगवान का, जब अर्जुन ने आदेश दिया तो उस वात्सल्य भाव के चलते कौन है भगवान जिनकी सब शरण लेते हैं, जो ज्ञान के भंडार हैं, अभी प्रकट होगा भगवत गीता में, ज्ञान के भंडार हैं, शक्ति बल ऐश्वर्य इस सब के भंडार हैं वो, और जिनके जिनकी जो लीलाएं हैं वो बस लीला मात्र से इस सृष्टि का सृजन हो जाता है, संहार हो जाता है, पालन हो जाता है, वो भगवान जो सारे जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं, जो नियंता हैं, हमारी इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, हमारे बाहर नियंत्रण अंदर नियंत्रण करते हैं, और जितने भी चाहे श्रेष्ठ हो निकृष्ट हो उन सबको नियंत्रण करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, तुरंत आदेश का पालन कर रहे हैं। ये भीष्म देव देख रहे हैं कि ये भगवान, ये इनका प्रेम है, ये इनका भक्त वात्सल्य है कि उन्होंने आदेश का पालन किया। अर्जुन ने आदेश दिया है और भगवान ने पालन किया। सपदि सखी बचो निशम्य, तो ये उन्होंने देखा। और क्या देखा कि आपने ये रथ तो ले गए, वो देख रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वो देख रहे हैं एक बहुत सुंदर बात। भीष्म अब जब भगवान पहुंच गए हैं तो अब गीता का उपदेश होने वाला है, लेकिन भीष्म देव एक अन्य बात देख रहे हैं। भीष्म यहां कहते हैं कि दरअसल आपने बिना बोले, एक तो आप बोलेंगे, अभी अगले श्लोक में भीष्म देव कहेंगे कि आपने गीता का उपदेश दिया, लेकिन यहां भीष्म देव भगवान से कह रहे हैं कि आपने बिना बोले गीता कह दी। हाँ, बस आप गए, आपने देखा, किसको देखा, आपने सारे सैनिकों को देखा और बिना बोले आपने गीता बोल दी, कुछ बोला नहीं लेकिन गीता का उपदेश हो गया। कैसे, केवल अपने कार्य से, आपने जो किया उससे गीता का उपदेश हो गया। क्या किया आपने, तो गीता का उपदेश क्या है, गीता में क्या कहा, एक उपदेश अर्जुन को उन्होंने दिया, तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुंक्ष्व राज्यं समृद्धं मये वेते निहिता पूर्वमेव निमित्त मात्रं भव सव्यसाचि। ये संदेश भीष्म हमें अपनी इस प्रार्थना से दे रहे हैं, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। वो कहते हैं कि भगवान दास बन जाते हैं अपने भक्तों के, सेवक बन जाते हैं अपने भक्तों के, और भक्त को क्या होना चाहिए, निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन। तो क्या गीता का उपदेश दे दिया उन्होंने, उन्होंने कह दिया अर्जुन को केवल देखने मात्र से कि अर्जुन तुम क्या सोच रहे हो, तुम मारने वाले हो, इस ये जो द्रोण है, ये जो भीष्म है, ये जो दुर्योधन है, तुम मारने वाले हो, मैंने पहले ही इन्हें मार दिया है, मैं ये वेते निहिता पूर्वमेवा, तुम तो केवल बस तीर ऐसे ऐसे उनकी तरफ दिखाओ, बस उतना ही करो, मार तो चुका हूं मैं। मान लीजिए वो अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम्हें तो तीर चलाने की भी जरूरत नहीं है, मैं पहले ही मार चुका हूं, बस ऐसे ऐसे दिखाओ तीर उनकी तरफ, हाँ बस, और तुम्हें श्रेय मिल जाएगा कि अर्जुन तुमने युद्ध किया। भीष्म ये कह रहे हैं, भीष्म ये कह रहे हैं कि भगवान आपने उन्हें पहले ही मार दिया था, अर्जुन ने तो केवल तीर दिखाए बस, क्योंकि भीष्म देव कहते हैं कि भगवान को किसी अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है। जैसे हम लोग महाभारत में क्या सुन चुके, यहां यहां भीष्म की दृष्टि से महाभारत के युद्ध को देखिए। एक हमने अपना सुना है महाभारत का युद्ध, क्या सुना है, हमने सुना है कि भीम ने दुर्योधन को मारा, अर्जुन ने कर्ण को मारा, इसने उसको मारा, ये सारा हमने महाभारत के युद्ध में सुना है। भीष्म कहते सब झूठ, सब झूठ है, न भीम ने दुर्योधन को मारा, न अर्जुन ने कर्ण को मारा, ये सब जो सुना ये सब झूठ है, ये सभी श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए। तो प्रश्न आता रे, श्री कृष्ण ने कैसे मारा, उन्होंने तो एक भी शस्त्र नहीं उठाया, भगवान ने कोई शस्त्र उठाया ही नहीं। तो भीष्म देव कहते हैं कि आपको कोई शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, आपकी दृष्टि ही बहुत है। देखिए ये भक्ति है। हम लोग सोचते हैं कि जिस समय भीष्म देव भगवान को देख रहे थे युद्ध में, तो एक शत्रु के रूप में देख रहे थे, और यहां हम देखते हैं कि भीष्म कैसे देख रहे थे भगवान को। तो वो कहते कि आपको तो जरूरत ही नहीं है किसी अस्त्र शस्त्र की, आप तो आंखों से ही अनुग्रह भी कर सकते हैं और निग्रह भी कर सकते हैं। अनुग्रह मतलब कृपा और निग्रह मतलब मृत्यु या समाप्त कर देना, बंद कर देना। आप उन किसी के भी जीवन को बंद कर सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं केवल आंखों से। भगवान की दो आंखें निग्रह अनुग्रह दोनों करती और दोनों साथ में होता है। असुरों के लिए जब भगवान उनको मारते हैं तो साथ में अनुग्रह भी होता है, कृपा भी होती है। तो उन्हीं आंखों से आप अनुग्रह करते हैं और उन्हीं आंखों से आप निग्रह कर सकते हैं, आप मार सकते हैं। तो इसीलिए भीष्मदेव कहते हैं कि ये महाभारत फिर से लिखी जानी चाहिए। महाभारत में तो लिख दी, बता दिया है कि अर्जुन ने किया, लेकिन दरअसल सब कुछ श्री कृष्ण ने किया। आपने हर तरफ देखा युद्ध क्षेत्र, और केवल देखने से आपने आयु घटा दी। अक्षण अक्षण देखा आपने और आपने आयु घटा दी, खत्म कर दी उनके जीवन को। और फिर ये युद्ध था, ये तो केवल एक दिखावा था। भीष्मदेव ये कहना चाहते हैं कि युद्ध था ये तो केवल दिखावा था, भगवान आप तो पहले ही सब कुछ कर चुके थे। तो ये भीष्म की भक्ति है जिसको वो यहां इस श्लोक में प्रकट कर रहे हैं, और प्रमुख संदेश वो दे रहे हैं कि भगवान सेवक बनते हैं किसके, जो व्यक्ति अपने आप को एक निमित्त बनाता है भगवान के लिए, अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर देता है। तो इस तरह से भीष्मदेव वर्णन करते हैं कि भक्त के आदेश का जब भगवान पालन करते हैं, भगवान भी भक्त के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो भगवान जब करते हैं तो उन्हें बड़ा प्रसन्नता होती है। जैसे एक पिता होते हैं, छोटा सा बच्चा होता है उनका, तो कुछ दे कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये ला कर दो, पिता बड़े प्रसन्न होते हैं, अच्छा मेरे बच्चे ने कुछ मांगा मैं ला कर देता। तो ऐसे भगवान भी बड़े प्रसन्न होते हैं जब भक्त उन्हें आदेश देते हैं। हालांकि भक्त बच्चे के समान है और भगवान पिता के समान, और ये संभव है अगर शुद्ध प्रेम हो भगवान और भक्त के बीच। और भीष्म देव इस बात से पूर्ण तरह से अवगत थे, वो जानते थे इस बात को, इसीलिए वो भगवान को क्या कह रहे हैं, अर्जुन के सखा के रूप में संबोधित कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि वो जानते हैं कि आपका बहुत प्रेम है भगवान अर्जुन से, और उस प्रेम के चलते आप यहां पर इस तरह से आप आए हैं। तो इसीलिए पार्थ सखे, पार्थ सखे, आप पार्थ के, पहले भी हम देख चुके विजय सखे, तो अर्जुन के लिए कह रहे हैं, क्यों, वो जानते हैं कि ये प्रेम है भक्त और भगवान के बीच में। साथ ही साथ जब भगवान ने सबके जीवन को कम कर दिया, समाप्त कर दिया कहना चाहिए, जितने भी लोग खड़े हुए थे उनको केवल देखकर उस युद्ध क्षेत्र में। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात की, निग्रह अनुग्रह, क्या अनुग्रह किया, सबको मुक्ति प्रदान कर दी। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जितने भी लोग उस युद्ध में मरे वो सब वैकुंठ गए, तो भगवान ने मुक्ति दे दी उनको। ये भीष्म देव देख रहे हैं, आपने केवल आंखें, लेकिन उनके जीवन को समाप्त नहीं किया, उनको मुक्त कर दिया। इसी बात को उद्धव भी बताते हैं भागवतम के तीसरे स्कंद में, जब विदुर जी से मिलते हैं तो वो कहते हैं तथैव चान्ये नरलोक वीरा य आहवे कृष्ण मुखार विंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्त्र पूता पद्मा पुरस्य। तो वो क्या कह रहे हैं कि तथैव चान्य नरलोक वीरा, उस युद्ध में बहुत सारे योद्धा थे, ये आहवे कृष्ण मुखारविंदम नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम। जब वो अपने देह को त्याग रहे थे तो भगवान की विशेष कृपा उनके ऊपर कि नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम, अपने नेत्रों से वो भगवान को देख रहे थे, भगवान के सौंदर्य के अमृत को आंखों से पी रहे थे। नेत्रे पिबंतो नयनाभिरामम पार्थस्त्र पूता पद्मा पुरस्य। शुद्ध हो चुके थे बोलो क्यों, एक शुद्ध भक्त के द्वारा तीर छोड़े गए थे पार्थस्त्र, तो उससे शुद्ध हो गए पद्मा पुरस्य, सब वैकुंठ को चले गए। तो यहां एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हम भीष्म देव के इस वाक्य से सीखते हैं कि भगवान किसी भी अवस्था में गलत कर ही नहीं सकते। ये एक विश्वास हमारे अंदर जागृत होना चाहिए। कई बार हम लोग प्रश्न कर लेते हैं, पूछते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, भक्तों के मन में भी आ जाता है, हम इतने समय से भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने ऐसा क्यों किया। हमें ये प्रश्न नहीं करना चाहिए भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमें विश्वास होना चाहिए भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया, क्योंकि भगवान गलत कर ही नहीं सकते। ये एक बात को अपने मन में बिठा लीजिए, विश्वास ले लीजिए, भगवान कभी गलत कर ही नहीं सकते, जो करते हैं भगवान करते हैं और भगवान गलत कर ही नहीं सकते। दूसरे शब्दों में, जो हो रहा है मेरे साथ सबसे अच्छा, ये मेरे लिए अच्छा, कितनी सुंदर भावना है। आपका अपमान हो रहा है, विश्वास करिए भगवान गलत नहीं करते, अगर मेरा अपमान करा रहे हैं तो निश्चित मेरे लिए अच्छा है, हो सकता है मुझको शुद्ध कर रहे हैं। जब हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास जाकर हमारा क्या भाव होता है, डॉक्टर गलत नहीं करेगा, विश्वास होता है, इसीलिए हम अपने आप को सौंप देते हैं। वो हमारे शरीर को काटता है, उसमें सुई लगाता है, हमें कुछ खिलाता है, हमें बेहोश करता है, सब हम आराम से तैयार हैं, उल्टा पैसा देते हैं, अपने आप को भी देते हैं पैसा भी देते हैं, चलो करो, क्यों, विश्वास है। क्या विश्वास है, गलत नहीं करेगा। अब डॉक्टर तो फिर भी कभी कभी गलत कर दे, लेकिन भगवान ऐसे डॉक्टर हैं कि वो कभी गलत करेंगे ही नहीं। तो जिस तरह एक डॉक्टर को हम अपना शरीर दे देते हैं, हम पैसे दे देते हैं, पूरा विश्वास दे देते हैं, श्रद्धा दे देते हैं, क्या कृष्ण को नहीं दे सकते इस बात पर विश्वास कि कृष्ण कभी गलत कर ही नहीं सकते। और इसी बात को विश्वास श्रद्धा रखते हुए हमें अपना जीवन समर्पण करना चाहिए कृष्ण को कि कृष्ण कभी गलत नहीं कर सकते। और ये भक्ति का आधार है, नहीं तो हम भक्ति किसकी कर रहे हैं। अगर हमें श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है भगवान पर कि हमारे साथ अच्छा नहीं करेंगे या अच्छा कर सकते हैं नहीं कर सकते, संशय है, तो एक तरफ विश्वास नहीं है दूसरी तरफ संशय है, दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। संशय आत्मा विनश्यति, विश्वास भगवान कभी गलत कर नहीं सकते। मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्यों मेरे प्रियजन की मृत्यु हो गई इतने समय में, अभी नहीं होनी चाहिए थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, भगवान गलत नहीं करते। मेरा धन चला गया है, भगवान गलत नहीं करते। मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, भगवान गलत नहीं करते। ये विश्वास होगा तो चाहे स्वास्थ्य अच्छा हो या ना हो, धन हो या ना हो, मान सम्मान हो या ना हो, प्रियजन हो या ना हो, हमारा विश्वास भगवान पर बना रहेगा और उस विश्वास के द्वारा हम शांति से इस जगत में रहते हुए भक्ति करके अपने जीवन के अंत में भगवान के धाम जा सकेंगे। इसलिए ये विश्वास हमें बहुत जरूरी चाहिए। अब उसी को आगे उस दृश्य को, अभी भीष्मदेव उस पूरे दृश्य का वर्णन अब भक्ति अपने अपने अपनी तरह से कर रहे हैं और उन्होंने अभी वर्णन किया कि अर्जुन ने आदेश दिया, आप लेकर आए, आपने सारे लोगों की जो जीवन था उसको कम कर दिया। और अब आगे क्या हुआ, आपने वहां खड़े होकर क्या किया, तो अब वो आगे कहते हैं, व्यवहित प्रतना मुखम निरीक्ष स्वजन वधा द्विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमति महरदात्म विद्ययाय चरणरति परमस्य तस्य मेस्तु। तो बहुत सुंदर बात वो कहते हैं। भीष्मदेव दरअसल अब तक भगवान के मुख का वर्णन कर रहे थे और अब चरणों की ओर जा रहे हैं। चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, मेरी रति कसमें हो आपके चरण कमलों में। तो क्या वर्णन किया कि आप अर्जुन को लेकर आए हैं, व्यवहिता आप खड़े हैं और आपने देखा जो दूर व्यवहिता दूर खड़े हुए उनको सैनिकों को देखा और उनके मुख को देखा और निरीक्षम निरीक्ष जस्ट केवल देखने से निरीक्ष कर रहे हैं और आपने तो सबकी आयु को कम कर दिया। लेकिन जब अर्जुन ने देखा उन्हीं लोगों को, अर्जुन ने अपने मित्रों को देखा स्वजन, और क्या देखा, स्वजन वधात, कि मुझे इनका वध करना है, स्वजन वधात विमुखस्य। तो अर्जुन ने कहा नहीं नहीं विमुख हो गया इस कर्तव्य से अर्जुन, स्वजन वधात कौन कह रहे हैं, भीष्मदेव जिनको मारने के लिए ही, जिनके लिए ही अर्जुन ने मना किया था कि देखो मैं भीष्म को नहीं मारूंगा, मैं द्रोणाचार्य को नहीं मारूंगा, जिनको मारने के लिए अर्जुन ने मना किया था वही भीष्म कह रहे हैं स्वजन वधात विमुखस्य। अरे ये अर्जुन अपने लोगों को, अपने स्वजन मतलब मेरे मेरे मित्रों मेरे संबंधियों को मारने से विमुख हो गया, तो ये क्या है, दोष बुद्धिया। भीष्मदेव कहते हैं उसकी दोष बुद्धि थी, वो कह रहा था मुझे नहीं मारेगा, दोष बुद्धिया। तो ये कहते कि उसकी दोष बुद्धि आ गई उसके अंदर। और फिर क्या हुआ, दोष बुद्धि आने से कुमतिम अरहत, कुमति मतलब उसकी जो ये जो मति मारी गई, कुमति मतलब बहुत गलत मति उसकी, तो उसको हटाना था, अहरत अहरत इन्हें हटा देना, खत्म कर देना, उसके लिए आपने क्या किया, आत्मविद्या आपने दिव्य ज्ञान को दिया। तो ऐसे भगवान आपके प्रति चरण रति परमस्य तस्य मेस्तु, मेरी आपके प्रति आपके चरणों के प्रति मेरी रति हो, इसको अब वो कह रहे हैं। तो भीष्मदेव ने पिछले श्लोक में भगवान का गुणगान किया कि भगवान सारथी बने हुए हो, आप अपने अपने भक्त अर्जुन का आदेश पालन कर रहे हो और आपने रथ लाकर यहाँ रख दिया, दो दो सेनाएं खड़ी थी बीच में आपने लाकर रख दिया। और अब क्या कह रहे हैं भीष्मदेव, क्या हुआ उसके बाद, तो वो कहते हैं दोष बुद्धि, जैसे ही रथ वहां खड़ा किया अर्जुन के अंदर दोष बुद्धि आ गई। क्यों अचानक दोष बुद्धि आ गई, क्योंकि अर्जुन के मन में एक दुख आ गया, दर्द आ गया, किस लिए, अरे मैं किसको मारूंगा, अपने ही संबंधियों को, स्वजन वधात विमुखस्य, अपने ही संबंधियों को मारूंगा, अपने शिक्षकों को मारूंगा, ये सोच सोच कर उसकी दोष बुद्धि आ गई। तो दोष बुद्धि क्या है, एक दृष्टि से कहना चाहिए कि अर्जुन बहुत अच्छा कार्य कर रहा था, ये कैसे दोष बुद्धि कह रहे हैं, लोगों को नहीं मारूंगा, मैं छोड़कर चला जाऊंगा, भिक्षा मांगने के लिए तैयार हूं। तो क्यों दोष बुद्धि? क्योंकि भगवान की इच्छा के विरुद्ध जा रहा है। तो इस जगत में दोष क्या है? दोष हर वो चीज है या हर उस वस्तु में, हर वो व्यक्ति में, हर वो स्थिति में, हर वो संपत्ति में दोष है अगर वो हमें भगवान से दूर कर रही है। विमुखस्य, अगर वो हमें विमुख कर रही है किससे? हमारे कर्तव्य से। कर्तव्य विमुख होना ये दोष बुद्धि है। स्वजन वद विमुखस्य, स्वजन का वध करना उस समय उसका कर्तव्य था, उससे परे हो जाना, विमुख हो जाना, ये दोष बुद्धि है। तो दोष बुद्धि क्या है? हम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हैं, हम अपने अपने जीवन में लगे हैं, हम धन कमाएंगे, हम बहुत बड़ा कुछ बनाएंगे, हम जीवन में ये करेंगे वो करेंगे, सारी दोष बुद्धि है अगर उसमें भगवान नहीं। तो दोष बुद्धि का अर्थ क्या है? दोष बुद्धि का अर्थ है अगर भगवान को निकाल दिया, भगवान की इच्छा को हटा दिया, तो फिर दोष बुद्धि है। भगवान की इच्छा के अनुसार युद्ध किया दोष बुद्धि नहीं है, मारा दोष बुद्धि नहीं है। तो दोष बुद्धिया वर्णन कर रहे हैं कि दोष बुद्धि आ गई उसके अंदर, मतलब उसने आपकी इच्छा के विरुद्ध सोचना शुरू किया। तो जब हमारे जीवन में, भक्ति के जीवन में हमारे, हमें ऐसी कोई स्थिति आए जहां जिस कार्य को करने से निश्चित भक्ति बढ़ सकती है, भगवान प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन उसके कारण हमें बड़ा दुख होगा, हृदय टूट जाएगा हमारा, आंखों से आंसू आएंगे, जैसे भीष्म पर तीर चलाते हुए अर्जुन की आंखों में आंसू थे, आंखों से आंसू आएंगे, क्या हमें वो कार्य करना चाहिए या नहीं? अगर वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है, कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए है, कृष्ण की योजना अनुसार है, आचार्यों के द्वारा हमें दिया गया है, और हम उसे आचार्यों की शिक्षाओं का अनुगमन करते हुए पालन कर रहे हैं, तो निश्चित करना चाहिए ऐसे कार्य को त्यागना दोष बुद्धि है। तो दोष बुद्धि आ गई भगवान उसमें, और फिर आपने क्या क्या देखा, उसने निरीक्षण, क्या निरीक्षण किया? स्वजन वधा, मैं नहीं करूंगा, अपने ही लोगों को नहीं मारूंगा। कुमति अहरद, तो भीष्म देव कहते हैं उसकी ये कुमति, ये जो गलत गलत बुद्धि उसकी हो गई थी, उसको हटाने के लिए भगवान आपने भगवत गीता या आत्म ज्ञान आपने उसको दिया, आत्म विद्या, आपने उसके ज्ञान ये हटाने के लिए आपने उसको भगवत गीता का ज्ञान दिया। सो कौन सी भगवत गीता? वो कहते आत्म विद्या, युद्ध विद्या नहीं कहा कि अरे आपको समझो अर्जुन इस समय सोच रहा था नहीं मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो उसको युद्ध विद्या नहीं दी आपने, आत्म विद्या दी, और जिसके आधार पर उसने वो युद्ध किया। तो इस विशेष इस श्लोक में विशेषता भीष्म देव भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बुद्धि, मेरा आकर्षण, मेरा मन विशेष करके आपके चरण कमलों में लगे। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने। सवे मनः कृष्ण पदारविंदयो, हमारा मन कृष्ण में लगे। तो भीष्म देव ये प्रार्थना आप कर रहे हैं, क्यों लगे? क्योंकि आप जिन्होंने अर्जुन के मोह का नाश कर दिया, तो आपके चरण कमलों का अगर मैं ध्यान करूंगा तो फिर बहुत अच्छी तरह से मेरा भी जो कोई मोह है वो समाप्त हो जाएगा। एक तरह से कहना चाहिए कि भीष्म देव हमें एक संदेश दे रहे हैं कि गीता क्या है, भगवत गीता क्या है। वो कह रहे हैं कि गीता कुछ नहीं है, बस भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरण में जाना, उनके चरण कमलों की शरण लेना, शरणागति, ये भगवत गीता है। तो जिस भगवत गीता को अर्जुन ने समझा, भीष्म ने भी समझा और भीष्म आज समझा रहे हैं कि भगवत गीता क्या है, कृष्ण के चरण कमलों के प्रति समर्पण, उनके चरण कमलों का आश्रय लेना। और इसी बात को गोपियां भी गोपी गीत में कहती, वीरचिता भयं वृष्णी धूर्यते चरणम ईयुषा संस्रते भया कर सरोरुहं कांत कामदं शिरसि देहि श्रीकर ग्रहं। कहते हैं आपके जो चरण कमल हैं, विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संस्रते भया, जितना भी भय है इस संसार का, संस्रते इस संसार का जो भी भय है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि अन्य तकलीफें, इस सब के भय से चरणमीयुषां संस्रते भया, सारे भय से मुक्त हो सकते हैं। और ये चरण कैसे हैं, गोपियां आगे वर्णन करती हैं, प्रणत देहिना पाप कर्षनम त्रिन चरानुगम श्रीनिकेतनम फणि फणार्पितम ते पदाम्बुजम् कृणु कृचेष्णा कृन्दिरिच्छयम्। आपके चरण कमल ते पदाम्बुजम् प्रणत देहिनाम पापकर्षणम्, जिन्होंने आपके चरण कमलों का आश्रय ले लिया उनके तो पापों को आप ऐसे ही नाश कर। और वही चरण है जो तृण चरानुगम गायों के पीछे पीछे चलते हैं, श्रीनिकेतनम लक्ष्मी जी का वास है, फणी फनार्पितम ते पदाम्बुजम, यही चरण आपने कालिया के सर पर रखे थे, फणी फणी फनार्पितम, फणी के फण पर आपने रख दिए, कालिया के फण पर आपने रखे हैं, हे कृष्ण वही चरण आप हमें भी प्रदान कीजिए। तो ये गोपियां इसको कहती है। तो भीष्म देव ये वर्णन कर रहे हैं कि आपने आत्मविद्या ज्ञान देकर अर्जुन को मुक्त किया। अर्जुन घबराया हुआ नहीं था, किससे, शत्रु से, सेना को देखकर नहीं घबराया था अर्जुन, दुर्योधन को देखकर नहीं घबराया था अर्जुन, लेकिन एक भक्त के रूप में वो सोच रहा था इन चीजों का क्या लाभ है, और इसीलिए उसने निर्णय किया कि वो इन भौतिक चीजों के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन ये तो उसकी दोष बुद्धि थी, इसीलिए भगवत गीता कही गई। तो भगवत गीता बद्ध जीवों के उद्धार के लिए कही गई है, जो जो उन्होंने गलत विचार अपने बनाकर रखे हुए हैं उसके लिए की गई, आत्मा के शाश्वत स्थिति को बताने के लिए की गई, ये भगवत गीता है। इसीलिए आत्मविद्या, आत्मविद्या है। तो अब आगे उस दृश्य को अब याद कर चुके भीष्म, आपने भगवत गीता कही, अब युद्ध में आगे जा रहे हैं और अब वो बहुत सुंदर वर्णन करने वाले हैं। तो पिछले श्लोक में उन्होंने वर्णन कर दिया कि किस तरह हमें भगवद गीता के द्वारा कृष्ण भक्ति में कोई भी दुविधाएं क्यों ना आए उससे वो बचा सकते हैं। उससे पहले उन्होंने वर्णन किया कि हमें निमित्त बनना चाहिए, और अब इस श्लोक में जहां वो अब वो वर्णन करने जा रहे हैं उस दृश्य का, जहां भगवान ने उनकी इच्छा को पूरा किया। तब उस दृश्य का वर्णन करते हुए हमें ये समझाते हैं कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान हैं, और क्या क्या कर सकते हैं। स्वनिगमं वहाय मत प्रतिज्ञा ऋतं धिकर्तुरम वप्लुतुरथस्त धृतरथ चरणोऽभ्ययाचलत्रु हरिरिवहन्तुमिभं गतोत्तरीयः। बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं भीष्मदेव। अभी तो उन्होंने अर्जुन का वर्णन किया, भगवत गीता का वर्णन किया, अब क्या कर रहे हैं वो कह रहे हैं स्वनिगमम, अपनी सत्यता को अपहाय, आपने छोड़ दिया, शून्य कर दिया अपनी सत्यता को। क्यों? मत प्रतिज्ञाम, मेरी प्रतिज्ञा के लिए। देखिए ये कृतज्ञता वो प्रकट कर रहे हैं भीष्म देव कि मेरी प्रतिज्ञा पूरा, वो ये नहीं कह रहे अर्जुन की रक्षा के लिए आपने कर दी, मेरी प्रतिज्ञा, आपने अपने सत्य को त्याग दिया। ऋतम अधिकर तुम अवाप्लुतो, कि आपने तो क्या कर दिया, और भी बहुत कुछ किया, अपना जो आपने वचन था वो तोड़ दिया, और आप रथ के नीचे आ गए, रथ से नीचे आ गए, रथस्थ, तो रथ के नीचे आ गए और क्या किया, बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। आपने एक चक्र ले लिया रथ का गिरा हुआ, धृत रथ चरण, तो रथ का जो चक्र था उसको आपने उठा लिया, और फिर क्या कर रहे हैं अभ्ययात, अभ्ययात मतलब तो बहुत जल्दी जल्दी आप मेरी तरफ आ रहे हैं। चले दुगह, ऐसा लग रहा है कि मानो पृथ्वी हिल रही है आपके चलने से। और कैसे आप आ रहे हैं, हरिरिव, एक 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 शेर की तरह आप आ रहे हैं, किस लिए, हंतुम, मारने के लिए मुझे। और कैसे आ रहे हैं, जैसे एक शेर हाथी को मारने जाता है, हाथी घबराकर भागता है, और उस समय जब आप भाग कर आ रहे थे आपको ये भी नहीं पता कि आपका उत्तरिया, आपका ये अंग वस्त्र वो गिर गया। तो भीष्मदेव देख रहे हैं ये सब कि भगवान कैसे आ रहे हैं, तो ये अनुभव है, देखिए ये भक्ति है। हम लोग देखते हैं भगवान जा रहे हैं, भीष्मदेव को मारने वाले हैं, इन भीष्मदेव क्या देख रहे हैं। भीष्मदेव ने देखा कि भगवान कूद गए रथ से नीचे। तो आप सब जानते हैं कि हुआ ये था कि भीष्मदेव को हर समय दुर्योधन जाकर कहते रहते थे, आप ठीक से युद्ध नहीं कर रहे, आप पक्षपात कर रहे हैं, आपको अर्जुन के प्रति प्रेम है इसीलिए उसको मारना नहीं चाहते। तो एक क्षत्रिय के लिए अपमान की बात है, वो पूरा युद्ध कर रहे हैं अच्छी तरह से, लेकिन कृष्ण है इसलिए अर्जुन को कुछ हो नहीं सकता, लेकिन दुर्योधन इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, तो बारंबार जाकर कहता रहता। अब तो एक दिन भीष्मदेव ने कहा ठीक है, मैं वचन देता हूं कि कल पांचों पांडवों को मार दूंगा। अरे कैसे मार देंगे आप, ये देखो पांच तीर हैं, अच्छा ये तीर मुझे दे दीजिए। दुर्योधन ने, आपका कोई पक्का नहीं है, रात को आप किसी को वापस दे दोगे, मुझे दे लीजिए। ठीक है ले जाओ, कल सुबह दे देना। ले गए, कृष्ण को पता चला कृष्ण तो परमात्मा है, तो अर्जुन को भेजा। अर्जुन आए दुर्योधन के पास, याद है आपने मुझे वचन दिया था। हाँ अर्जुन मुझे याद, बताओ क्या चाहिए तुम्हें, राज्य चाहिए, क्या चाहिए, राज्य तो मैं वैसे ही दे लूंगा, तो फिर क्या चाहिए, मुझे वो पांच तीर दे दीजिए। दुर्योधन ने सर पकड़ लिया, अरे इसको कैसे पता चला। तो पांच तीर दे दिए। सुबह भीष्मदेव ने कहा लाओ वो पांच तीर कहाँ है, आज मैं मारने वाला हूं। उन्होंने कहा वो तो अर्जुन ले गया रात को। भीष्मदेव ने सर पे हाथ नहीं रखा, भीष्मदेव मुस्कुराए, क्योंकि भीष्मदेव जानते थे कृष्ण ने किया है। तो भीष्मदेव बड़े प्रसन्न हो गए, वो जान गए कि आज या तो मैं उनकी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा या फिर अर्जुन मरेगा। आज मैं ऐसा युद्ध करूंगा, कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी ही पड़ेगी, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वाई है, अब उनकी तोड़वाऊंगा। ये भक्त और भगवान के बीच प्रेम का आदान प्रदान है। तो भीष्मदेव ने इस बात को किया, दुर्योधन ने तो रख लिया था लेकिन भगवान उसको ले गए। तो इस समय कृष्ण अपने भक्त भीष्म को प्रसन्न करना चाहते थे कि मैं भीष्म तुम्हारा व्रत था ना, तुम्हारा तुमने अभी वचन लिया है कि तुम मेरा व्रत तोड़वाओगे, मैं अपना व्रत तोड़ने के लिए तैयार हूं। तो उस समय भीष्म देख रहे हैं कि आप कूद गए हैं और आप भूल गए कि आप सारथी हैं, आप अपनी अपने वचन को भूल गए कि आप शस्त्र नहीं उठाओगे, और आपने पहले वचन लिया था और एक शेर की तरह आप मेरे तरफ आ रहे हो, कूद रहे हो, भाग रहे हो, और आपके भार से पृथ्वी हिल रही है, और ये जो आपका उतरिया है वो गिर गया है, भगवान ने ध्यान नहीं दिया, उतरिया गिर गया है, या फिर भीष्म देव कह रहे हैं कि आपका ये जो रूप मैं देख रहा हूं, भगवान का एक नाम है चक्रपाणी, चक्रपाणी मतलब जिनके हाथ में चक्र है, तो कह रहे कि ये चक्रपाणी रूप जिसको मैं देख रहा हूं, लोगों को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, योगियों को योग साधना करनी पड़ती है, ज्ञानियों को बहुत ज्ञान लेना पड़ता है, फिर भक्ति करके फिर वो आपके रूप को देखते हैं, भगवान मैंने तो केवल युद्ध करके आपके इस रूप को देख लिया। भीष्मदेव ने युद्ध के द्वारा उनके उस रूप को देख लिया, अर्थात जो लाभ योगियों को योग करके, तपस्वियों को तपस्या करके, ज्ञानियों को ज्ञान प्राप्त करके और साधकों को बड़ी कड़ी साधना करके प्राप्त होता है, भीष्म को युद्ध करके प्राप्त हो गया। ये भगवान की कृपा है। और उनका उतरिया ये जा रहा है, गत उतरिया ये जा रहा है, क्यों जा रहा है, भीष्मदेव देख रहे हैं, भीष्मदेव भगवान को देख रहे थे, देखा उनका उतरिया उतर कर उधर चला गया, तो भीष्मदेव ने क्या कहा कि उतरिया क्यों गिर गया आपका? वो कहते हैं कि उतरिया इसलिए गिर गया क्योंकि जब आप रथ को छोड़कर आए हैं तो घोड़े वहीं थे, तो घोड़ों को बड़ा दुख हुआ होगा, घोड़े सोच रहे होंगे हमारी रक्षा कौन करेंगे, तो भगवान आपने अपना उतरिया वहां रख दिया, और साथ ही साथ आपको ये भी चिंता थी कि अगर मैं आ जाऊंगा तो अर्जुन की रक्षा कौन करेगा, तीरों से तीर चलेंगे अर्जुन को लग सकता है, तो भगवान आपने अपना उतरिया रख दिया कि ये मेरा उतरिया है, ये घोड़ों को भी सांत्वना देगा कि मैं हूं, और अर्जुन की भी रक्षा करेगा अन्यों के तीरों से। तो ऐसे भगवान अब बड़े क्रोध में मेरी तरफ आ रहे हैं। भगवान का क्रोध भी आनंद देता है। और भगवान क्रोध क्यों करते हैं? भगवान क्रोध करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। भगवान रामचंद्र ने क्रोध कर दिया समुद्र के ऊपर, 2 दिन 3 दिन प्रार्थना की है, स्थान दीजिए, हमें जाने दीजिए, रास्ता दीजिए, समुद्र ने नहीं दिया, भगवान क्रोधित हो गए, लक्ष्मण को कहा लाओ, वहां वर्णन है भगवान की आंखें लाल हो गई, भगवान ने कहा लाओ मेरा धनुष बाण, अभी इसको सुखा देता हूं समुद्र को। भगवान ने क्रोध किया। नरसिंह देव ने क्रोध किया जब प्रहलाद महाराज के ऊपर बहुत अत्याचार हुआ और अंत में प्रहलाद को मारने गए, नरसिंह देव बहुत क्रोधित थे, उन्होंने फाड़ डाला हिरण्यकश्यपु के पेट को, उसकी आंतड़ियां निकालकर अपने गले में पहन ली, खून खून, इतना क्रोध में वो थे। दामोदर लीला में भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध में थे आंखें लाल लाल हो गई, अपने दांतों से अपने होठ चबा रहे हैं, भगवान का क्रोध भी ये गुणगान करने लायक है। तो ऐसे भगवान ने क्रोध किया और फिर उनको वो देख रहे हैं, और फिर भीष्म को भी भगवान ने दर्शन दिए, तो भीष्म भी भगवान के दर्शन कर रहे हैं। किस दर्शन, क्या सोच रहे हैं भीष्म? भीष्म सोच रहे हैं कि आज हे कृष्ण आपने अपनी सत्यता को त्याग दिया है। किसने त्याग दिया सत्यता को? सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्य सत्य नेत्रम सत्यात्मकम माम त्वाम शरणम प्रपन्ना। देवता प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका सब कुछ सत्य है। सत्यव्रतम, अरे जो सत्यव्रतम है उन्होंने अपना व्रत तोड़ दिया। आज भीष्मदेव देख रहे हैं और उनकी तरफ आप मुझे मारने के लिए भागे हैं, तो इस भक्त वत्सल रूप को भीष्मदेव ने दर्शन किया। और क्या उनके विचार हुआ आगे, अपनी आगे प्रार्थनाओं में वो क्या कहते हैं इसको हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।